احکام سلبیہ سے مراد یہی ہے کہ وہ احکام کے جو وجود میں اصلاً نہیں پائے جاتے ہیں، جیسے مثلاً آپ توحید کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے صفات میں بعض ثبوتیاں ہیں بعض سلبیاں ہیں، ثبوتیاں کا معنی ہے کہ ہونا ضروری ہے اور سلبیہ کا معنی یہ ہے کہ نہ ہو. یہاں بھی تقریبا یوں ہی ہے کہ احکام سلبیہ کے وجود کے اندر ہی یہ احکام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور دلیل کے ساتھ جو ہے یہاں پر ثابت کرتے ہیں. عرض کیا تھا ایک تشکیل کے اندر کہ مشاہ جو کہتے تھے کہ حقائق متباینہ ہے، دلیل کیا ہے بسیط ہونا ہے، وہ یہاں پہ آج واضح ہوگا کہ بسیط ہونے سے کیا مانتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں رکھتے. پہلا حکم کیا ہے اس کے، کہتے ہیں کہ وجود پہلا حکم ہے حکم سلبی، یعنی وجود کا مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کا غیر بنے. مثلا انسان کے مقابل میں اس کا غیر ہے، حیوان مثلا حیوان کے مقابل میں اس کا غیر ہے، مثلا شجر نبات غیر موجود ہے اس کا. کہتے ہیں کہ وجود کے مقابل میں نہیں ہے. وجود سے یہاں کیا مراد لے رہے ہیں، یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں. ہم نے کیا کہا تھا، وجود جو ہے اپنے تمام مراتب کے ساتھ، یعنی ہم نے کہا تھا خدا سے لے کر آخری مرتبے تک یہ ایک پوری ہستی ہے، اس کو کہتے ہیں وجود. درست. اس کے پھر آگے مراتب ہیں، مطلب ایک مرتبہ واجب ہے، مرتبہ ممکن ہے، اور یہ تمام مثلا مراتب. یہ جو حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وجود کا غیب نہیں ہے، مراتب کو دیکھ کے نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ایک مرتبہ دوسرے مرتبے کا غیر ہے. عالم امکان غیر از عالم واجب ہے. یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے کل ہستی کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ تمام وجود اپنے تمام مراتب کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں ہے. کیوں؟ اس کا غیر کون ہے؟ عدم. عدم کوئی چیز نہیں ہے تاکہ اس کا غیر بن سکے، اس کا مقابل بن سکے. الفاظ ہے بس یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. کوئی آپ سے کوئی یہ سوال کر لے کہ مثلا ان جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ انسان کا غیر تو حیوان ہے، حیوان کا غیر نبات ہے، تو یہ بھی تو وجود رکھتے ہیں، ان کا تو غیر ہے، تو غیر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ وجود اپنے تمام مراتب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کا مقابل، اس کا غیر کوئی نہیں ہے عدم کے سوا، اس کا پس کوئی غیر نہیں بن سکتا، اس کا کوئی غیر نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ وجود کا مقابل عدم ہے، اور عدم بطلان بطلان محض ہے. بطلان محض سے مراد یعنی اصلا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں رکھتا، کسی قسم کا وجود نہیں رکھتا، یعنی نیستی اور نیستی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس. جب نیستی ہی نیستی ہے اس وقت اس کے مقابل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کے مقابل میں تب آتے جب دو چیزیں اور مقابل میں ہوں. عدم تو کوئی چیز نہیں ہے تو آگے وجود کے مقابل میں آگے اس کا غیر بنے. آباز ہے بس پہلا حکم یہ ہے کہ وجود غیر نہیں رکھتا. دوسرا حکم جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے. وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے. میں تھوڑا غیر اور ثانی میں فرق بیان کر دوں پھر اس مطلب کو آگے ادامہ دیتے ہیں. غیر اور یہاں کہا غیر نہیں ہے، یہاں کہا ثانی نہیں ہے. کیا فرق ہے ان کے درمیان غیر اور ثانی کے اندر؟ فرق واضح ہے. اگر تو دو چیزوں کے درمیان حقیقت کے اندر فرق ہو تو وہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں. مثلا انسان غیر ہے کس کا؟ حیوان کا. کیوں؟ دونوں کی حقیقت فرق کرتی ہے. حیوان بے معنی وہ خارج لیں، حیوان نہ ہو کے جو اس کی جنس میں داخل ہے، وہ والا مراد نہ ہو. یا مثلا لے لے انسان غیر از نبات ہے، یہاں غیریت ہوگی. کیوں؟ دونوں کی حقیقتیں جدا جدا ہیں. جب دو چیزوں کی حقیقت جدا ہو تو आपस में गैरियत खराब सा होता है मेरे भाई। लेकिन अगर दो चीजें हैं हकीकत में क्या है एक जैसी हैं, हकीकत में अगर एक जैसी हों तो क्या होगा, उस वक्त वो सानी कहलाएगा। मसलन इंसान, आप भी एक मिसदाक हैं इंसान के, मैं भी एक इंसान का मिसदाक हूँ आप, ठीक है। अब हम आपस में गैर नहीं है, यानी ये नहीं कहा जाएगा कि मैं गैर आज शुमा हूँ मसलन है, यानी आपका गैर हूँ, ऐसे नहीं कहा जाएगा। बल्कि क्या कहेगा कि मैं आपका क्या हूँ, सानी हूँ, यानी जिस तरह आप इंसान हैं उसी तरीके से मैं भी, आप एक मिसदाक हैं मैं दूसरा मिसदाक हूँ उसका, सानी से कहते हैं। आप एक हो दूसरा मैं हूँ, ये कब कहा जाता है, जब एक हकीकत के अंदर मुश्तरक हूँ, इंसानियत के अंदर हूँ, मुश्तरक हैं हम, और उसके जो हमारे अवारज शख्सिया है उसकी वजह से जुदा है, इस जुदाई को कहते हैं कि ये क्या है, सानिया गैर हकीकत जुदा है वहां पर। मसलन एक जगह हैवानियत है दूसरी जगह नबात है, अब नबात और हैवानियत की हकीकत अलग अलग है, उसकी अपनी जातियात है, इसकी अपनी जातियात है। इंसान और नबात के अंदर हजर के अंदर जो है वो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के गैर हैं। गैर वहां होता है जहां हकीकत जुदा हो दो चीजों की या इससे भी ज्यादा, चाहे जितनी भी आप हकीकतें, मसलन दीवार टेबल इंसान के गैर हैं एक दूसरे के, क्यों, इनकी सबकी अलग अलग हकीकतें हैं। लेकिन एक ही जात के अफराद को गैर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, ये एक दूसरे के क्या है, सानी है। बात क्लियर हुई यहां तक। अब कहते हैं कि वजूद का कोई सानी नहीं है, सानी से क्या मुराद है, अर्ज कर दिया है, अब सानी क्यों नहीं है, फरमाते हैं इसलिए, क्यों सानी की जरूरत, सानी वहां पर होता है कि जहां पर एक तो अर्ज किया कि हकीकत वाहिद हो, दूसरा क्या है, उसका माबेहिल इश्तराक यानी जिस नुक्ते में वो मुत्तहिद है इफ्तिराक उसके अंदर ना हो, वो किसी और चीज के अंदर पाया जाता हो, तब वहां पर कहेंगे कि ये सानी है उसका। मसलन फर्ज करें अगर उसका इत्तेहाद जो है वो जिस्म होने में है, तो उसका अगर इफ्तिराक रंग होने में होगा फिर हम कहेंगे कि ये सानी है उसका। लेकिन अगर हमें क्या ऐसा मोरिद मिल जाए कि जहां पर एक नुक्ता इत्तेफाक भी वही हो और नुक्ता इफ्तराक भी वही हो, एक ही हो, एक ही चीज के अंदर वो मुश्तरक भी है और मुख्तलिफ भी है, तो कहते हैं वहां पर सानी का इतलाक नहीं होता। बात वजह है, तो फरमाते हैं हम पीछे वजूद के बारे में क्या पढ़ के आए हैं, वजूद कौन सी हकीकत में से है जिसका माबेल इश्तराक, माबेल इश्तराक का गैर है या दोनों एक हैं, वजूद के बारे में पीछे क्या पढ़ गया है, एक है वाहिद मुशक्किक जो बनाया था हमने, एक दूसरे का गैर नहीं बनाया था। मतलब मिसालें दी थी, कितनी मिसालें दी थी आपको, मतलब कहा था कि दो और चार ये क्या है, इसका इश्तराक भी अदद में है और इफ्तराक भी अदद में है, और फिर इसको तस्बीत किया था इस मिसाल के अंदर कि अगर खुदा और इंसान मसलन दो चीजें हैं तो इनका इश्तराक भी वजूद के अंदर है, इनका और इश्तराक किसके अंदर है, वजूद के अंदर है, क्योंकि इसका वजूद लामुतनाही है, इसका वजूद मुतनाही है, दुरुस्त। बस जब वजूद की हकीकत ऐसी है कि जिसका माबिल इश्तराक और माबिल इफ्तराक एक है, तो इसका मतलब है कि सानी का इतलाक पास नहीं कर सकते, बस ये नहीं हुई, बस वजूद का कोई सानी नहीं है। वजूद का कोई सानी नहीं है क्योंकि सानी हद तक आपको बयान कर देता हूँ बाकी इसके गुजर बाद वाली फसलों में आएगी। तारीफ इसकी क्या, जौहर किसे कहते हैं? मसलन पहले आपको समझा दूँ, जौहर मसलन आप कहते हैं ऐसी चीज के जो अपने तहकुक में गैर का मोहताज ना हो। मसलन इस वक्त आप मौजूद हैं, अब आप अपने वजूद में किसी चीज के मोहताज थे। मसलन पहले मिसाल देता हूँ दूसरी, शायद उससे ज्यादा वाज़ह हो जाए। रंग, अगर रंग अगर अपना वजूद पैदा करना चाहता है, आया वो दीवार का मोहताज है या नहीं है? यानी जब तक आप रंग को किसी चीज के ऊपर नहीं लगाएंगे, रंग अपना वजूद नहीं रखता, दुरुस्त है? तो इस वक्त कहते हैं कि रंग ऐसी जात है कि जो अपने तहकुक में मौजू की मोहताज है। मौजू यानी जिसके ऊपर उसने आना है, उसको मौजू यहाँ पर ताबीर करते हैं। बस रंग ऐसी जात है कि जो अपने तहकुक के अंदर मौजू की मोहताज है, गैर की मोहताज है। लेकिन आया इंसान रंग की मानिंद है? कोई हो या ना हो, आप अपना तहकुक रख सकते हैं, दुरुस्त है? बस कहते हैं कि इंसान क्या है? ऐसी जात है कि जो अपने तहकुक में मौजू का मोहताज नहीं है। इसको कहते हैं जहां पर मौजू का मोहताज ना हो उसको कहते हैं जौहर, और जहां पर मौजू का मोहताज हो वहां क्या कहते हैं? अरज। जौहर क्या तारीफ है? एजा वो जेदा फिल खारिज वो जेदा क्या? मैं ये लिखें पहले इसको ताकि इस ताबीर आपको याद रहे, अगर कहीं लिखी हुई इम्तिहान में आ जाए या कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए इस ताबीर का। इज़ा वुजिदा फिल खारिज वुजिदा ला फिल मौज़ू, इज़ा वुजिदा फिल खारिज वुजिदा ला फिल मौज़ू। यानी जौहर एक ऐसी माहियत है कि जो खारिज में अगर वजूद पैदा करना चाहे तो क्या है? मौजू की मोहताज नहीं है। वो जेदा लाफी मौजू यानी मौजू के मोहताज नहीं है। अरज की क्या तारीफ हो जाएगी? एजा वो जेदा फिल खारिज वो जेदा फिल मौजू, यानी अगर अरज ऐसी माहियत है कि जो खारिज में अगर वजूद पैदा करना चाहे तो वो क्या है? मौजू की मोहताज है अपने वजूद में। अरज ऐसी माहियत का नाम है कि जो खारिज में अगर वजूद पैदा करना चाहे तो किसकी मोहताज है? मौजू की। मिसालें दे दी आपको, ज़हन में होना चाहिए। अब कहते हैं कि और दूसरी ये बात ज़हन के अंदर रखें कि ये जो जौहर और अरज है, हम तकसीम कर रहे हैं ना, एक एक ज़ात जो है वो या जौहर है या अरज है, लिख लिया। अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास दो किस्म की जात हैं, या जौहर होगी या अरज होगी। अब कहते हैं ये तो तकसीम हो गई, जौहर होना और अरज होना, इसका मकसद क्या है? ये तो तकसीम है, जौहर और अरज होना, इसका मकसद क्या है? मकसद कहते हैं इसकी माहियत है, यानी माहियत जो है वो या जौहर होगी या अरज होगी। उसी वजह से इसकी तारीफ में क्या आता है? माहियतुन, जौहर क्या है? माहियतुन इज़ा वुजिदत फिल खारिज वजदत ला फिल मौजू। इसी तरीके से अरज जब की जब तारीफ करते हैं तो कहते हैं माहियतुन اذا وجدت في الخارج وجدت في الموضوع. مثلا ماهیت، پس اس جوہر اور عرض کا مقسم کون ہے؟ ماہیت ہے. اب آئیں اس کی طرف، حکم سلبی کی طرف. کہا حکم سلبی کیا ہے کہ وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ جوہر و عرض کا مقسم ماہیت ہے، یعنی جوہر ہونا اور عرض ہونا ماہیت کے احکام میں سے ہے، اور وجود غیر از ماہیت ہے. بس ماہیت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہو سکتے. بس اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وجود جوہر نہ جوہر ہے نہ عرض، جواب کیا ہے؟ جوہر اور عرض احکام ماہیت میں سے ہیں، اور وجود غیر از ماہیت ہے. ماہیت کا مقابل وجود ہے، اور مقابل کبھی ایک دوسرے کا حکم قبول نہیں کرتے. یہ ایک حکم تھا یہاں. اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے؟ اگلا حکم یہ ہے کہ وجود کیا ہے؟ وجود کسی مرکب کا جز نہیں ہے. کسی مرکب کا جز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ذات نہیں ہے اس کائنات میں کہ جس کے اجزاء میں ایک جز کیا ہو؟ وجود ہو. آپ کوئی مثلا پانی دیکھیں گے تو آکسیجن ہائیڈروجن وجود نہیں ہے اس کے اندر. آپ مثلا انسان دیکھیں گے، ہمارے ناطے کا وجود اس کے اندر
نہیں
ہے. وہ اس کو نامی لکھیں تو مسئلہ نہیں ہے. میں ابھی اس کو سمجھاتا ہوں. یہ میں نے فقط آپ کا ذہن قریب کرنے کے لیے آج کیا کہ یہاں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا کل آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے اجزاء میں سے ایک جز کیا ہو؟ وجود ہو. یعنی اجزاء میں نہیں. آپ مثلا آپ کہیں پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن مثلا ایک جو ہے وہ وجود سے مثلا بنتا ہے نا، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. وجود نہیں ہے نا، ذات میں شامل نہیں ہے وجود. عرض کیا تھا فصل ہو جاتا ہے جلدی. وجود نہیں ہے نا، ذات ہے. یہ ساری ماہیات ہے مثلا اس کا. آپ کا کیا تھا؟ وجود اپنے وہ کیا نام ہے، اس کی ذاتیات کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اس کو. مثلا آپ اگر انسان کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کے اندر وجود آپ کو جو یہ بات ہو رہی ہے بھائی اللہ خارج کے اعتبار سے مرکب. کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو مل کیا ہے وجود سے مل کے بنا. کیا مطلب اس کا؟ اس دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ अगर आप कहेंगे वो एक चीज है कि जो वजूद और गैरे वजूद से मिलकर बनी है, तो हम आपसे सवाल करेंगे कि ये गैरे वजूद क्या है। या यूं करके, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर एक शय वजूद व गैर तो ये सवाल होगा कि गैर वजूद क्या है। दो ही चीजें हो सकती हैं, गैर वजूद या माहियत है या अदम है। या माहियत है या अदम है। अब माहियत के बारे में हमने क्या कहा है, असालतुल वजूद की बात में हमने यह बयान किया था कि माहियत एतबारी है, एतबारी है। बस एक शय एतबारी जुज से मिलकर असीम नहीं बन सकती। मसलन आप कभी भी ऐसा नहीं, आपको कोई चीज मिलेगी कि दो एक चीज मुरक्कब है दो चीजों से, उसका एक जुज तो असील है यानी वजूद, और दूसरा जुज उसका क्या है, एतबारी है। अब असील और एतबारी से मिलकर तो कोई चीज खारिज में नहीं है, क्योंकि एतबारी का क्या माना गया था, जो खारिज को पुर किए हुए नहीं है। जब वो खारिज में ही नहीं है तो इससे मिलकर कोई चीज बन सकती है, नहीं बन सकती। इसी तरीके से अदम, अदम भी बुतलाने महज है। जब बुतलाने महज है तो एक चीज किसी बुतलान से मिलकर कोई चीज नहीं बना सकते। तो बस वजूद किसी मुरक्कब का जुज नहीं बन सकता, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप कहेंगे वजूद व गैरे वजूद से मिलकर बनी है, क्योंकि गैरे वजूद या अदम है या माहियत है। माहियत एतबारी है, खारिज में वजूद नहीं रखती। अदम जो है वो असल नीस्ती है, और नीस्ती कभी भी किसी चीज के साथ मिलकर किसी चीज को तश्कील नहीं देती। बस एक ये हुक्म साबित हो जाता है कि वजूद किसी मुरक्कब का जुज अगला हुक्म क्या है? खुद वजूद मुरक्कब नहीं है, वजूद मुरक्कब नहीं है। पहले क्या, इससे पहले क्या बात की है, वजूद किसी मुरक्कब का जुज नहीं है। अब क्या बात है कि खुद वजूद मुरक्कब, यानी यानी वो कह सकते हैं यानी वजूद का कोई जुज नहीं है। पहले ये बात हो रही थी कि एक चीज है उसका एक जुज वजूद है और एक जुज उसका गैर वजूद है। अब ये बात हो रही है कि खुद वजूद जो है वो अज्जा नहीं रखता, खुद वजूद जो है वो मुरक्कब नहीं। मुरक्कब क्यों नहीं है उसकी आप यहां बयान करते हैं। सबसे पहले तो यहां तरकीब की अकसाम बयान करनी पड़ेंगी कि मुरक्कब होने की चंद किस्में। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको एक एक करके रद्द करेंगे। हमारे पास तरकीब मुख्तलिफ किस्म की है, तरकीब जो है या अतमी है या खारजी है या क्या है मिकदारी है। ये तीन किस्में हैं। यानी तरकीब अकली कहां पर होती है, जब किसी चीज की जिन्स और फासला हो। मसलन इंसान के बारे में कहते हैं कि इंसान मुरक्कब तरकीब अकली रखता है। क्यों रखता है तरकीब अकली, क्योंकि इंसान मुरक्कब है जिन्स और फासल से। ठीक है, ये तरकीब अकली, इसको साथ साथ लिखते रहे क्योंकि ये दलील में शामिल है ये सारी चीजें, ये आप समझेंगे तो फिर एक एक करके इन सबको रद्द करना है। तरकीब अकली क्या है, वो चीज के जो जिनसो जिनसो फासल से मरकब हो, वो यानी तरकीब, वो तरकीब अकली कहलाती है। तरकीब खारजी क्या है कि जो क्या है मादा व सूरत से मरकब हो। मादा व सूरत से मुरक्कब हो, मादा व सूरत से क्या मुराद है, आप इसको मुतवज्जे हो, इसको लिखने के बाद इसे देखें। फलसफे के अंदर मादा व सूरत से क्या मुराद है ये समझे, क्योंकि ये बहुत ऐसी इस्तलाह है जो अव्वल फलसफा से लेकर आखिर फलसफा तक ये चलती है, लिखने भी है लेकिन ये कि थोड़ा समझे पहले। मादा व सूरत किसे कहते हैं, आप देखें बीज आप एक लेते हैं, बीज के अंदर कहते हैं मसलन आपने आम की गुठली ली, आम की गुठली लेकर उसको जमीन में बोया, जमीन में जब आपने बोया उसको तमाम शराइत जो है वो हासिल हुई, शराइत हासिल होने के बाद वो गुठली किस में बदल गई, आम में, आम के पौधे में बदल। अब जब आप गुठली को लेकर खड़े हैं उस वक्त अगर कोई आपसे पूछे आप इस गुठली का क्या करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि मैं इस गुठली को बोऊंगा। क्यों बोएंगे भाई, क्योंकि इस गुठली में इस्तेदाद है कि ये क्या बने। आपने क्या कहा कि गुठली के अंदर क्या है, इस्तेदाद है किसका, आम बनने का। और जब आप उसको जमीन में बो देंगे और वो अपनी शराइत के मुताबिक चीजों को अख्ज करके गजाइत लेकर जब पौधा यानी आम बन जाएगा, यानी आम जब आम का दरख्त हो जाएगा, तो आपका जो मकसूद है वो पूरा हो जाएगा। दुरुस्त, फलसफे के अंदर इस इस्तेदाद को कहते हैं मादा, और वो चीज के जिससे जो चीज जिस चीज की वो इस्तेदाद रखता था, वो इस्तेदाद अगर वो अपनी फेलियत को पहुंच जाए उसको कहते हैं सूरत। मसलन इंसान के नुतफे के अंदर इस्तेदाद है किसकी, इंसान बनने की। आप अगर आप नुतफे को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि इसके अंदर इस्तेदाद है इंसान बनने की, और जब वो इंसान बन जाता है तो उस वक्त वो फेली हो जाता है, इंसान फेली हो जाता है, फेलियत में बदल जाता है। फेलियत में बदलना यानी वो इस्तेदाद से निकलकर अपने मतलूब तक पहुंच गया, फेलियत में आ गया, तो उस इस्तेदाद को मादा कहते हैं, और जब वो फेलियत पैदा कर दे यानी अपने मकसूद तक पहुंच जाए उसको कहते हैं क्या, सूरत। सूरत यानी फेलियत, मादा यानी इस्तेदाद, यानी मादे को इस्तेदाद, सूरत को क्या कहते हैं, फेलियत। दोस्त, आप कहते हैं आप कायनात में जो भी चीज ले लें, जो جو عالم امکان کے ساتھ عالم نہ عالم مادہ کے ساتھ ارتباط رکھتی ہو، عالم مادہ میں تمام کی تمام دو چیزوں سے مرکب ہے، مادہ و صورت سے، انسان مادہ و صورت سے مرکب ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس کے اندر استعداد ہونی چاہیے اور دوسری طرف وہ فعلیت بھی پیدا کرے. اگر انسان کے اندر استعداد ہو لیکن فعلیت پیدا نہ کر پائے، انسان آئے گا؟ نہیں ہوگا. اگر انسان کے اگر کیا نطفے کے اندر استعداد انسان بننے کی نہ ہو، انسان بنے گا؟ نہیں بنے گا. بس دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، استعداد بھی ہو اور پھر وہ استعداد فعلیت میں بھی تبدیل ہو. ہر چیز جو بھی آپ لے لیں وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، مادہ و صورت. درخت لے لو، نبات لے لو، حیوان، یہ ٹیبل وغیرہ جتنے بھی، لکڑی جو ہے اس کے اندر مادہ بھی ہے اور کیا ہے، صورت بھی ہے. اس کے اندر، اس لکڑی کے اندر استعداد تھی کہ وہ ٹیبل بنے، اور پھر جب وہ استعداد تھی اس نے نجار نے آ کر اس سے استفادہ کر کے ٹیبل بنایا، فعلیت پیدا کر گئی، یہ صورت اختیار کر گئی اس کی. بس یہ لکڑی کیا ہے، استعداد رکھتی ہے، مرکب ہے کس سے، مادہ و صورت سے. بات واضح ہوئی سے؟ استعداد کو مادہ کہتے ہیں اور فعلیت کو صورت کہتے ہیں. فلسفہ ریاضی کی طرح آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا، تھوڑا سا ذہن ادھر ادھر چلا جائے تو تمام کا تمام مطلب جو ہوتا ہے وہ اپنا نکل جاتا ہے. بس ہر چیز دو چیزوں سے مرکب ہے، مادہ و صورت سے. مادہ یعنی استعداد، صورت یعنی فعلیت. تو ترکیب خارجی ہے، یعنی خارج میں ہر کوئی دو چیز، میں اب خارج میں کھڑا ہوں دو چیزوں سے مرکب ہوں، مادہ و صورت. اس وقت بھی میں، اگر میں انسان ہوں، کچھ فضائل میرے پاس ہیں، اب میں کچھ اور فضیلتوں کو اگر کسب کرنا چاہتا ہوں تو وہ تب کروں گا جب میرے اندر مادہ موجود ہوگا، استعداد ہوگی، میں تب اس فضائل کی طرف جاؤں گا. اگر میرے اندر مثلا فرض کریں ہمیں ہمارے اندر معصوم کل بننے کی استعداد نہیں ہے، آیا کوئی کوشش کرتا ہے معصوم کل بننے کی؟ نہیں کرتا. کیوں؟ اصلا استعداد نہیں ہے ہمارے اندر. بشر جائز الخطا ہے، اس نے کبھی بھی معصوم نہیں بننا، مگر یہ کہ خدا کسی کو انتخاب کر لے، وہ خدا نے کر لیا جتنے کرنے کا. میں دم بدم کیا ہے، میرے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس مادے کی وجہ سے آ رہی ہیں، اس استعداد کی وجہ سے آ رہی ہیں جو میرے اندر موجود ہے. بات بات ہوئی ہے؟ بس ہر چیز کائنات کی، ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا سے لے کے یہاں تک، نا، عالم مادہ میں، عالم مجرد نہیں، ملائکہ نہیں، عقل نہیں، خدا نہیں، یہی نہیں، عالم مادہ میں مادی جو چیزیں ہیں جس کو ہم حس کر سکتے ہیں، چاہے آنکھ کے ذریعے، چاہے سونگنے کے ذریعے، چاہے لمس کے ذریعے، یہ والی جو چیزیں ہیں، تمام چیزیں ہیں وہ سب کے سب ترکیب خارجی رکھتی ہیں، یعنی کیا مراد، مادہ و صورت. بات واضح ہوئی؟ چلیں آگے. ترکیب مقداری کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز جو طول و عرض و عمق رکھتا ہوں، تو کہتے ہیں کیا، یہ ترکیب مقداری رکھتا ہے. مثلا آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، اگر اس میں طول و عرض عمق ہے، آپ کہیں گے اس کے اندر جو ترکیب ہے ترکیب مقداری ہے. ہر چیز آپ دیکھیں ترکیب مقداری رکھتی ہے، ٹیبل آپ دیکھ لیں اس کے اندر وہ طول و عرض عمق موجود ہے، ترکیب مقداری کہلائے گی. بس ترکیب مقداری کہاں ہوتی ہے، جہاں طول و عرض عمق ہو وہاں ترکیب مقداری ہے. یہ ترکیب واضح ہو گئی. اب آتے ہیں، جب ہم نے یہ کہا کہ وجود مرکب نہیں ہے، تو مرکب نہیں ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں جب ان تمام اقسام کو باطل کریں گے، تب آپ کہیں گے کہ وجود مرکب نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے باطل کر. ترکیب میں کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، ترکیب عقلی کو باطل کر. ترکیب عقلی، ترکیب اگر فرض کر لیں کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ وجود جو ہے وہ ترکیب عقلی سے مرکب ہے، یعنی کیا مراد، وجود جنس و فصل رکھتا 500 फसल रखता है। कोई बंदा आगे ये इद्दआ करते हैं, हम उसको क्या जवाब देंगे, कैसे उसको रद्द करेंगे? हम उनसे पूछेंगे कि ये जो आप कह रहे हो कि वो जूट जिन सौ फसल रखता है, ये जिन सौ फसल कौन कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पे अब चंद सूरतें बनती हैं, देखें ऐसे बनती हैं। एक तरफ हम जिन्स लिखते हैं, एक तरफ हम फसल रखते हैं। अब जिन्स, अब इसकी चंद सूरतें बनेंगी, वो ये कि जिन्स भी वजूद हो और फसल भी। दूसरी सूरत क्या बनेगी, जिन्स वजूद है और फसल क्या है, गैर वजूद है। तीसरी सूरत क्या बनती है कि जिन्स क्या है, गैर वजूद है और फसल क्या है। चौथी और आखिरी सूरत क्या बनती है, दोनों गैर हैं, वजूद है और फसल भी गैर वजूद है। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से कि हम वजूद के अलावा हमारे पास और कोई चीज नहीं है कि जिससे हम मुरक्कब करें, तो जिन्स और फसल भी वजूद और गैर वजूद से ही बनेगी। क्योंकि अभी हमारी कुल्ले हस्ती के बारे में बात चल रही है ना, कुल्ले हस्ती को मद्देनजर रखे कहने, कुल्ले हस्ती को अगर मद्देनजर रखें तो हमारे पास क्या वजूद है, या गैर वजूद है, तक तक को नहीं अभी देख रहे हम कुल्ले हस्ती को देख रहे हैं। जैसे वहां बनाया था, मतलब हम ये नहीं देख रहे कि ये जो मरातिब हैं, कभी इसको देख रहे 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 हैं ना, ये तमाम मरातिब को शामिल जो हस्ती है उसको देख रहे हैं। अब इसके मौका ये अगर मुरक्कब हो तो या ये वजूद से मुरक्कब होगा या गैर वजूद से मुरक्कब होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और चीज है नहीं है हमारे पास। तो उसकी क्या है, ये चंद सूरतें बनती हैं, या तो जिन्स और फसल दोनों वजूद होंगी, या क्या है, जिन्स और फसल दोनों गैर वजूद होंगी, या एक तरफ वजूद दूसरी तरफ गैर वजूद और एक तरफ गैर वजूद दूसरी तरफ वजूद हो जाएगा। ये चार सूरतें बनती हैं। अब देखें, कहते हैं चूंकि हम गैर वजूद गैरियत को पहले बातिल कर आए हैं, देखिए तरतीब बास कैसे है, आप गैरियत को पहले बातिल कर रहे हैं, आपने कहा ला गैर लिल वजूद, वजूद के लिए कोई गैरियत नहीं है, तो ये वाली शिक्के तो खुद ब खुद बातिल हो जाएंगी। जहां गैर है, ये वाले ये भी गैर रखता है, बस एक वजूद और गैर वजूद से कोई चीज मिलकर नहीं, कोई गैर वजूद है ही नहीं है कोई चीज। माहियत है, माहियत एतबारी है, अदम अदम महज है, कभी दो चीजें मिलकर एक चीज को नहीं बना सकते। ये भी गैर वजूद रखता है और ये भी गैर वजूद रखता है, बस कितनी हमारी सिक्के गलत हो गई, तीन सिक्के, ये तो हो नहीं सकता। पीछे एक ही शिक बचती है, जिन्स भी वजूद है और फसल भी वजूद है। अब ये बातिल कैसे होगी, ये बातिल करने के लिए फिर हमें मंतिक की तरफ वापस जाना पड़ेगा। सारी फसल आसान थी, लेकिन ये इसमें आगे थोड़ा मुश्किल भी है, आगे सारा काम हो जाएगा, इसको कैसे हम रद्द करेंगे। अब एक मंतिक के कानून की तरफ जाएंगे, उस कानून के जरिए हमें शिक को बातिल करना है, मंतिक की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे, वो ऐसे के का कानून क्या है, हमारे पास क्या है, तीन चीजें पाई जाती हैं। आपने कुलियाते खम्स में पढ़ा है पांच चीजें, कौन कौन सी, जाती, अरज़ू, दो चीजें हैं इनकी, फिर आगे अकसाम है। जाती कितनी किस्में थी, तीन किस्में थी, या क्या होगा, जिन्स होगा या फसल होगा या नौ होगा। अरज़ी जो है वो या अरज़ी खास है या अरज़ी लाज़िम है, अरज़ी खास या अरज़ी आम आम होता है उसमें। अभी हमारी जो है वो बात जाति में चल रही है, क्योंकि जिन्स फसल है, जिन्स फसल तो जाति में पाई जाती है। हमारे पास जाति तीन किस्म की है, या जिन्स है या नो, जिन्स फसल। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इनका आपस में राबता देखना है, इनका आपस में क्या राबता है, जिन्स का नो के साथ क्या रहता है, फसल का नो के साथ क्या रहता है, ये फसल जो है वो नौ की निस्बत क्या है, मुकव्विम है, मुकव्विम है। मुकव्विम क्या मुराद है, देखें नौ से मुराद मतलब इंसान लें, फसल से मुराद आप क्या ले लें, मुकव्विम से क्या मुराद होता है, यानी ऐसी चीज के जो किसी चीज की जात को बना रही हो, तश्कील दे रही हो, उसको कहते हैं ये चीज मुकव्विम है। जब एक चीज मसलन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन ये पानी की जात को तश्कील देते हैं, लिहाजा इन दोनों को क्या कहते हैं, मुकव्विम है ये पानी की जात के, क्योंकि अगर ये ना हो तो कभी पानी में वजूद में नहीं आ सकता, इसको कहते हैं मुकव्विम। कहते हैं कि नासासल जो है वो नौ की निस्बत मुकव्विम है, यानी क्या मुराद, यानी नातिक जात इंसान में दाखिल है, उसकी जात को तश्कील देती है, देता है ये नातिक। अगर नातिक ना हो तो कभी भी इंसान वजूद में नहीं आ सकता, बस फसल जो है नौ की निस्बत मुकव्विम है। ये हो गया फसल और नौ का आपस में रब्ता, जिन्स भी उसकी प्रजाति में है। अभी आते हैं इन दो की तरफ के जिन्स और फसल का आपस में क्या रब्ता। जिन्स मतलब हैवान और फसल यानी इसको समझाने के लिए फिर मैं अरबी की तरफ चला जाता हूं, ताकि मतलब आपके जहन में लेकर आऊं, ताकि ये मतलब आप सही तरीके से समझ जाएं। अरबी आम किसे कहते हैं, अरबी आम मतलब माशी करना, माशी इंसान की निस्बत क्या है, अरजी आम है, माशी इंसान की निस्बत क्या है, अरजी आम है। अरजी आम से क्या मुराद है, यानी इंसान में भी पाई जाती है और गैर इंसान में भी पाई जाती है, इसको कहते हैं अरजी आम, यानी इंसान को भी शामिल और गैर इंसान को भी शामिल है। जब इस तरीके से कोई अरजी हो के जो मुख्तलिफ जातों के ऊपर हमल हो सकती हो, उसको कहते हैं ये अरजी आम है, जितना के माशी है। अरजी खास पस किसे कहेंगे, अरजी खास यानी जो फकत एक नौ के साथ खास हो, मसलन अरजी खास की मिसाल क्या देते हैं, जाहिर जाहिर फकत इंसान हैवान जाहिर नहीं है, बस ये अरजी खास है। क्या है ये मुकदमा आपको समझ में आ गया, अरजी लाजिम और अरजी खास का। अब आते हैं इसकी तरफ के जिन्स और फसल का आपस में क्या रास्ता है, हैवान और नातिक का आपस में क्या रास्ता है, आपस में इनका क्या रास्ता है। आप देखें हैवान की अगर आप तारीफ करना चाहें, नातिक उसमें आता है नहीं आता, क्यों, हैवान की आप तारीफ करते हैं जिस्मुन हसासुन मुतहर्रिकुन बिल इरादा, ये हैवान की आप तारीफ करते हैं, दुरुस्त, नातिक तो नहीं आया उसमें, पस नातिक इसकी जात में शामिल नहीं है। अगर आप नातिक की तारीफ करना चाहें तो उसमें हैवान आएगा नहीं आएगा, आप नातिक का क्या तारीफ है, मन लहुन नुत्क, ये नातिक की तारीफ। तुम्हारा जीता हो जाएगा, क्योंकि अगर एक चीज दूसरी चीज की जात में दाखिल है तो राबता जाती होने का है, अगर एक दूसरे की जात में दाखिल ना हो तो राबता कौन सा है? अरजी का है। बस मालूम यह हुआ कि जिंस और फस आपस में अरजी हैं, लेकिन फर्क है अरजी के अंदर, अरजी आम है या अरजी खास है। फरमाते हैं कि अगर आप जिंस को फासल की निस्बत देखो तो ये क्या है? अरजी आम है। वही कह रहा हूँ, पहले तो ये समझाया आपको कि अरजी हैं कैसे हैं, क्योंकि एक दूसरे की जात में दाखिल नहीं है। अरजी होना जब समझ में आ गया, फिर अगली बात ये है कि आम है या खास है। तो उसमें फिर ये अर्ज किया कि जिन्स को अगर फासल की निस्बत देखें तो जिन्स अरजी आम है, किसके लिए? फासल के लिए। क्यों? इस वजह से कि हैवानियत फकत नातकियत में नहीं पाई जाती। अरजी आम का क्या माना किया है? कि जो फकत एक नौ के साथ खास नहीं है बल्कि दूसरी अनवाओं में भी पाई जाती है। जैसे हैवानियत माशी जो है वो जिस तरह इंसान में पाई जाती है, उस तरीके से हैवान में पाई जाती है। इसी तरीके से जिन्स जो है मसलन हैवान, ये फकत नातिक के अंदर नहीं पाई जाती बल्कि नातिक के अलावा भी बाकी चीजों में पाई जाती है। बकर, गनम, इन चीजों के अंदर भी पाई जाती है। हैवान की कितनी अनवाह है, उनके अंदर हैवानियत पाई जाती है। बस चूंकि एक के साथ खास नहीं है, बस ये अरजी लाजिम अरजी आम है। बस जिन्स क्या है? फासल की निस्बत अरजी आम है। और फासल को अगर देखें, फासल को अगर जिन्स की निस्बत देखें आकर, तो कहते हैं फासल अरजी खास है जिन्स के लिए। क्यों अरजी खास है? इस यानी जहक की माने है, जिस तरह जाहिक होना इंसान के साथ खास है, नातिक हमेशा हैवान होगा, नातिक कभी गैर हैवान नहीं हो सकता। आपको कभी मिलेगा ऐसा नातिक जो हैवान ना हो? नातिक हमेशा हैवान होगा। बस नातिक जब खास है हैवान के साथ, तो फासल क्या हो जाएगी? अरजिए खास हो जाएगी। किसके लिए? जिन्स के लिए। ये मुकदमा था दलील को बाकी करने के लिए। अब मैं दोबारा दोहराता हूं, जिन्स, इसको लिखें आप, जिन्स फासल की निस्बत अरजिए आम है। जिन्स का फासल के, या इस तरीके से इबारत लिख लें, जैसा भी आप लिखना है, जिन्स का राबता फासल के साथ अरजिए आम वाला है और फासल का राबता जिन्स के साथ अरजिए खास वाला है। अरजिए खास वाला है, ये लिख लिया। अब आते हैं इसकी तरफ, जिन्स अगर वजूद मुरक्कब हो जाए जिन्स और फासल के साथ, तो हमारे पास फकत एक ही सूरत दुरुस्त बचती थी, वो क्या है? जिन्स भी वजूद हो और फासल भी वजूद हो। तो अब यहां पर देखें, वजूद फासल भी वजूद है और जिन्स भी वजूद है, वजूद निस्बत वजूद के साथ अर्जी ये आम वाली है या जाती वाली? अर्जी अर्जी का आपस में राबता है या जाती होने का राबता है आपस में? इनको देखें, फसल वो छोड़ दें, फसल जिन्स को, वो तो असल कानून था ना, अब यहां पर आके उसको रद्द करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि अब आकर अगर देखें कि जहां जिन्स भी वजूद हो फसल भी वजूद हो, वहां फसल का राबता जिन्स के साथ अर्जी खास वाला हो जाएगा या जाती का हो जाएगा? जाती का हो जाएगा। क्यों? ये फासल असले जिन्स को तहकुक पैदा करेगी। यहां राबता जाती वाला पैदा हो गया है, हालांकि हमें राबता कौन सा चाहिए फासल और जिन्स में? अरजिए खास वाला, यानी फासल जिन्स की निस्बत अरजिए खास होनी चाहिए। लेकिन जब ये वाली सूरत हम देखते हैं तो मालूम होता है कि ना, फासल तो यहां पर क्या बनी हुई है? मुकव्विम बनी हुई है। किसके लिए? जिन्स के लिए, क्योंकि ये आकर इसकी जात को तश्कील दे रही है, क्योंकि फासल जो है वो जिन्स के साथ ना मिले तो कभी भी मुरक्कब वजूद में नहीं आता, लिहाजा ये वो कानून मंतिकी के खिलाफ है, पस ये वाली सूरत भी दुरुस्त है। नतीजा क्या निकला? पस वजूद मुरक्कब नहीं है जिन्सो फासल साथ। ठीक है, अब उसको कामिल कर लें। कहां तक लिखा था इसको? हाँ, फसल कर। अब अगर आप आ जाए इसकी तरफ, अगर वजूद मुरक्कब हो जिन्सो फसल के साथ, तो हमारे पास एक ही सूरत सही थी। वो क्या थी? जिन्स भी वजूद है और फसल भी वजूद है। जिन्स भी वजूद थी और फासल भी वजूद थी, जैसे ये नक्शा बना के आपको दिखाया। इस सूरत में जब फासल का राबता जिन्स की तरफ देखा जाए तो फासल मुकब्बे में जिन्स बनती है। इस सूरत में, यानी जहां जिन्स भी वजूद है और फासल भी वजूद है, इस सूरत में अगर फासल का राबता जिन्स के साथ देखा जाए तो मुकव्विम का राबता है, ना के अलज़ी खास का राबता, और ये कानून मंतिकी के खिलाफ है। बात हो गई? ये एक हमने इसको बातें किया। अब आते हैं तरतीबे खारजी की तरफ। तरकीब खारजी क्या थी? जो क्या वो मादा व सूरत से मुरक्कब हो। हमारा इद्दआ ये है कि वजूद मादा व सूरत से मुरक्कब नहीं है। क्यों मुरक्कब नहीं है? क्यों? इस वजह से, इसको समझने के लिए एक और कायदे की फिर जरूरत है। जिन्स और फासल तो आपको समझ में है ही है। मैं इसको बाकी इस्तलाहात में नहीं लेके जाता ताकि आप मुशव्विश ना हो फकत, लेकिन इबारत में आया हुआ है यहाँ। लेकिन एक इस्तलाह है, जल्दी से समझा देता हूँ, आसान भी है। हमारे पास तीन किस्म की इस्तलाह है। हमारे पास तीन किस्म की इस्तलाह है। एक मर्तबा है ला बिशर्त, बिशर्त शर्त, बिशर्त ला। मिसाल देता हूं एक इन तीनों को समझाने के लिए। आप दावत करते हैं अपने दोस्तान की, और दावत करते हुए ये कैद लगाते हैं कि जैद मेरे घर में ना आए। सब दोस्त आओ लेकिन जैद नहीं आना चाहिए। इस किस्म की कैद को कहते हैं बशर्ते ला, जैद के ना आने की कैद लगाई ना होने। आप कहते हैं सारे दोस्त आ सकते हैं लेकिन जैद को नहीं आना चाहिए, इसको कहते हैं बशर्ते ला। अगर आप ये कहते हैं कि सारे दोस्त आए लेकिन जैद को हतमन आना चाहिए, अगर जैद ना आया तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जैद को हतमन आना चाहिए, वो क्या बन जाएगी? बेशक पेशा हो जाएगी ये। और एक मरतबा आप ऐसे कहते हैं, होता है हर किस्म एक जिंदगी में इस तरीके से आपने मिसालें बनाई होगी। आप कहते हैं कि मेरे घर दावत है, जो भी चाहे आ जाए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तान की दावत है, आप जिसका जिसको टाइम मिले, जिसको दिल करे वो आ जाए। इस किस्म की शर्त होगी जिसके अंदर किसी किस्म की कैद नहीं लगाई जाती, मुतलक छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं ला लावे शर्त है। ये ज़हन के अंदर रखें। अब माता वही जिन्स है कि जो आपने कुलियात खम्स में पढ़ा है, सूरत वही फासल है कि जो आप कुलियात खम्स में पढ़ के आए हैं। फर्क क्या है? फर्क एतबार का है उनके अंदर। अगर आप सूरत को, अगर आप फासल को बेशर्ते ला लिहाज करो तो फिर ये सूरत कहलाएगी, तो ये सूरत कहलाएगी। और अगर आप सूरत को ला बेशर्त लिहाज करो तो ये क्या कहलाएगी? सही है, लिखें इसको। अगर आप बेशर्ते शय सूरत को ना, बेशर्ते ला अगर सूरत को आप लिहाज करते हैं तो वो सूरत ही कहलाएगी, बेशर्ते ला लिहाज करें। अगर हम सूरत को बेशर्ते ला हिसाब करें या लिहाज करें या मद्देनजर रखें, जो भी आप ताबीर लिखें, तो वो उस वक्त सूरत कहलाती है। लेकिन अगर इस सूरत को ला बेशर्त लिहाज करें तो ये फसल कहलाती है। ला बेशर्त लिहाज करें तो ये क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। मादा भी इसी तरीके से है। अगर मादा को बेशर्ते ला हिसाब करें या लिहाज करें तो वो मादा कहलाएगा, और अगर इस मादा को ला बेशर्त लिहाज करें तो वो क्या कहलाएगा? जिन्स कहलाएगा। बेशर्त ला करें तो मादा कहलाएगा, ला बेशर्त कहें तो वो जिन्स कहलाएगा। है एक ही चीज, फकत लिहाज का फर्क है। सूरत को बेशर्त ला करो तो सूरत बनेगी, और अगर ला बेशर्त कर दो तो फसल बन जाएगी। इसी तरीके से मादा को अगर ला बेशर्त करो तो जिन्स बन जाएगी, बेशर्ते ला करो तो मादा बन जाएगा। ये इनका आपस में रब है। बेशर्ते ला और ला बेशर्त क्या कहना चाहते हैं? मसलन यहां पे देखें, आप हैवान को तो इंसान पर हमल कर सकते हैं, आप कहते हैं अल इंसानो हैवानो, ठीक है। ये आप हैवान क्या है, यहां इस सूरत में ला बेशर्त है, ठीक है। लेकिन आया आप कह सकते हैं अल इंसानो मादतुन? चूंकि मादा को आप इंसान पर हमल नहीं कर सकते, इस वजह से कहा जाता है कि बेशर्ते ला है। ये समझ आ रही है? यानी चूंकि मादा को आप इंसान पर हमल नहीं कर सकते, इस वजह से कहते हैं कि अगर बेशर्ते ला लिहाज किया जाए तो वो मादा बन जाता है। लेकिन अगर इसके क्या है, अगर हम हमल कर दें उसको, फिर वो क्या बन जाएगा? ला बेशर्त हो जाएगा। यानी क्या मुराद? वो जो ममानअत थी वो खत्म हो गई है, हैवान पास उसके ऊपर हमल हो रहा है। अगर हमल हो जाए मादा तो जिन्स है, अगर हमल ना हो तो मादा ही रहता है। इसको इस्तेलाहों में यूं जिक्र किया है कि अगर बेशर्ते ला हो तो मादा, अगर ला बेशर्त हो तो जिन्स। इसी तरीके से फासल है, आप कह सकते हो अल इंसानो नासिकुन, बस ये क्या है? ला बेशर्त है क्योंकि हमल हो रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अल इंसानो सूरतुन, बस جب نہیں کہہ سکتے تو یہ کہہ بشرط لا ہے.
پس
جن مادہ و صورت کا جنس و فصل کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ رابطہ ان کا ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی ہیں دونوں، لیکن فرق لحاظ کا ہے، ذہنی فرق ہے ان کے درمیان. کیا ہے وہ عرض کر دیا ہے آپ کو. یہ تھی توضیح ایک قانون کے اعتبار سے. اب آتے ہیں رد کی طرف، کہ جن از وجود جو ہے وہ مادہ و صورت سے مرکب نہیں. کیوں مرکب نہیں ہے؟ ہم پچھلے حکم میں کیا باطل کر کے آئے ہیں؟ اس کو قابل کر لیں جلدی جلدی. مادہ و صورت اور جنس و فاصل ایک ہی ہیں.
ہاں
وہ لکھ رہے ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں نے کہا شاید آپ پچھلا لکھ رہے ہیں. اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں مادہ و صورت جنس و فاصل ایک ہیں حقیقت کے اعتبار سے، فرق ان کے درمیان ذہنی ہے، اعتباری ہے، یعنی اعتبار کا فرق ہے. چونکہ ہم نے پچھلے حکم میں ثابت کر دیا کہ وجود جنس اور فصل نہیں رکھتا، پس ثابت ہو جاتا ہے کہ وجود مادہ و صورت بھی نہیں رکھتا. یعنی جس طریقے سے ہم، چونکہ ہم پچھلے حکم میں ثابت کر چکے ہیں کہ وجود مرکب نہیں ہو سکتا جنس و فاصل کے ساتھ، پس ثابت ہو جاتا ہے کہ وجود مادہ و صورت سے بھی مرکب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے کہ جنس و فاصل، مادہ و صورت آپس میں ایک ہی ہیں. اعتبار فرق جو ہے وہ اعتباری ہے، ذہنی ہے. جس طرح اگر ہم نے ثابت کر لیا جنس و فاصل نہیں رکھ سکتا وجود، تو درجہ اولا جو ہے وہ مادہ و صورت نہیں رکھ سکتا. یہ ایک حکم ہے. اس کے بعد آخری حکم جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مادہ جو ہے وہ جزء مقداری نہیں رکھتا، یعنی طول و عرض و عمق سے مرکب نہیں ہے. وجود اجزاء مقداری سے مرکب نہیں یا نہیں ہو سکتا یا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ طول و عرض و عمق جسم کے احکام میں سے ہیں. یعنی جسم طول و عرض و عمق رکھتا ہے، غیر از جسم تو نہیں طول و عرض و عمق رکھتا. اور جسم ہمیشہ مادہ و صورت سے مرکب ہوتا ہے. چونکہ ہم ये हमारी एक फांसी यहाँ पे, कहता एक हुक्म रह गया उस हुक्म में बयान नहीं करता, क्योंकि उसको बयान करने के लिए फिर तफसील की ज़रूरत है, थोड़ा हौसला है आगे का फकत का ख़त्म हो गया। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, आप अपने इम्तहान को देखें और अपने हौसलों को देखें, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मुझे कहें तो मैं दो तीन फसलें और भी पढ़ा सकता हूँ, मैं तैयारी करके आऊँ। तीन चार फसलों की इरादा था पढ़ाने का, कि आपको चूँकि तेज़ी से आगे लेके चलूँ, ख़त्म हो जाए। नहीं, अगर एक एक फसल से तो ख़त्म नहीं होगा ये, कम अज़ कम भी चार चार पाँच में फसलें हों फिर जाके करीब पहुँचेंगे, ख़त्म फिर भी नहीं होगा। ये जहन में रखें कि बेदाया कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। ये आपको बार बार इसलिए आमादा कर रहा हूँ आपके जहनों को, कि इस मुबासे की बरकत से ये हो जाएगा कि आप बहुत सारे सवाल हल कर सकेंगे इसके अंदर से, और बाद में कोशिश करूंगा कि जो फसलें मुहिम नहीं है वो ना पढ़ाई जाए। लेकिन ये चूंकि पांच फसलें मुहिम हैं, और ये कि आप अपने जहन को फलसफे की फजा में आ जाएं, इस वजह से ये है। मसलन इलाहियात के मानल अखस जो खुदा के बारे में पास है वो हतमन पढ़ेंगे, मसलन अगर हमें सारी फसलें छोड़नी ही पड़ी, वो चूंकि मुहिम में हतमन सवाल उसके अंदर से आ सकता है, उसकी बाज बातें जो हैं वो पढ़ेंगे। इसी तरीके से बाज दूसरी मुहिम बातें हैं उसको लेकर चलेंगे उसमें। लेकिन ये है कि बहरहाल ये है कि इस के साथ साथ आप ये हो जाएंगे कि किसी हद तक आप पेपर हल करने के काबिल हो जाएंगे। है इरादा पढ़ने का? अपने इरादे के साथ चले ना, अगर इरादा इरादा नहीं है तो फिर पढ़ाने का फायदा नहीं है।